आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
जलवायु विप्लाश वह शब्द है जिसका उपयोग 2024 में दुनिया भर में बढ़ती मौसमी तीव्रता और बार बार होने वाले चरम मौसम की घटनाओं का वर्णन करने के लिए किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वर्ष वैश्विक औसत तापमान अस्थायी रूप से प्राचीन औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होने की ओर बढ़ रहा है, जिसमें मानव जनित जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण है। इस एपिसोड 2024 द ईयर इन रिव्यू में आज हम जलवायु परिवर्तन की चर्चा करेंगे। ये वर्ष चरम मौसमी घटनाओं से भरा रहा है और इसका प्रभाव ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ की स्थिति में भी देखा गया है। अंतरिक्ष से देखा जाए तो उत्तले लगून और गहरे पानी की नीली छाया इस पृथ्वी के सबसे बड़े जीवंत ढांचे के रूप में दिखती है। क्वींसलैंड के तट से दूर कोरल सागर में स्थित ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ प्रणाली है, जो 3,48,700 वर्ग किलोमीटर में फैली है। ये लगभग इटली या जापान जितनी बड़ी है। ग्रेट बैरियर रीफ पर लगभग 600 विभिन्न प्रवाल प्रजातियां हैं और 9,000 प्रजातियों के समुद्री जीवन का ये घर भी है। इस विश्व धरोहर स्थल की निगरानी कर रहे वैज्ञानिक कहते हैं कि दिसंबर 2023 के बाद से इसमें और अधिक क्षति हुई है, जिसमें एक व्यापक मास ब्लीचिंग की घटना, 2 चक्रवात और बाढ़ शामिल है। ऑस्ट्रेलियाई समुद्री विज्ञान संस्थान 1972 से इस रीफ का सर्वेक्षण कर रहा है। डॉक्टर मैनुअल गोंजालेस रिवेरो इस संस्थान में शोध कार्यक्रम निदेशक हैं।
If further this disturbance happens, like bleaching events or cyclones or more crown-of-thorn starfish outbreaks, we'll expect that the coral cover will not regain the levels that we've seen before. In the Great Barrier Reef, we've seen the average of about 20 to 40% coral cover, which is an indication of a healthy reef. What we're seeing now is that coral cover is declining by 2/3 of what it was there before, but also not all the corals have been affected in the same way. We've seen Table Acroporas, which was one of the ones, the fastest growing corals that gained, that was the main driver of recovery in the past 5 years, being severely affected by the mass bleaching event.
मेगा फायर और मेगा ड्राउट जैसे शब्द अब उन विशाल घटनाओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं जो दुनिया भर में लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। इस वर्ष जून में नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन नामक पीयर रिव्यू पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार पिछले 20 वर्षों में चरम आग की घटनाएं वैश्विक स्तर पर दोगुनी हो गई हैं। डेटा यह भी दिखाता है कि फॉसिल फ्यूल से वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 37.4 बिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गया है। ग्लोबल कार्बन बजट के अनुसार ये पिछले 12 महीनों में 0.8% की वृद्धि है। ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट काउंसिल का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न मौसम के चरम हालातों का होना क्लाइमेट विप्लैश कहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो और साइरो की 2 वर्षीय रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की जलवायु 1910 से अब तक 1.51 डिग्री सेल्सियस से गर्म हो चुकी है। समुद्र की सतह का तापमान 1900 से अब तक औसतन 1.08 डिग्री तक बढ़ चुका है। मौसम विज्ञान ब्यूरो से डॉक्टर कार्ल ब्रिगांजा का कहना है कि ये परिवर्तन हमारी जलवायु प्रणाली में तेजी से हो रहे बदलावों को दिखा रहा है।
And this warming is largely now locked in. It's due to greenhouse gases that have already accumulated in the atmosphere. And those greenhouse gases will continue to warm the oceans in particular over the next couple of decades.
बांग्लादेश ने जून से सितंबर के बीच मॉनसून के दौरान 34 वर्षों में सबसे भयानक बाढ़ का अनुभव किया। कम से कम 71 लोग मारे गए और लगभग 1.2 मिलियन परिवार हफ्तों तक बाढ़ के पानी में फंसे रहे। ऐसे में संक्रामक बीमारियां होने का जोखिम भी बना रहा। ढाका के पूर्व में कुमला में किसान अब्दुल हलीम ने अपने घर लौटकर पाया कि अब उनके पास कुछ भी शेष नहीं है।
हमारे एक घर है, अभी थकता हूं, हमारे फैमिली नहीं है।
I used to live in this mud hut with my family. Strong current of flood water destroyed the house, so I sent my family to a shelter, and I am guarding the household. There's no way of living in here anymore.
लंबे मॉनसून के मौसम और बढ़ते तापमान के बीच बांग्लादेश में डेंगू बुखार के सबसे खराब प्रकोप का सामना किया गया। देश में नवंबर के मध्य तक 400 से अधिक डेंगू से संबंधित मौत हो चुकी थी। वैश्विक तापमान का अवलोकन करने वाले 5 प्रमुख अनुसंधान समूहों में से 3 मानते हैं कि 2024 ही वो वर्ष होगा जब मासिक और वार्षिक तापमान अस्थायी रूप से प्राचीन औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी का कहना है कि एकल वर्ष का यह तापमान पेरिस समझौते का उल्लंघन नहीं करता है। वे कहता है कि दीर्घकालिक तापमान जो दशकों में मापा जाता है 1.5 डिग्री से नीचे बना हुआ है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अगर वर्तमान नीतियों में से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो इस सदी में दुनिया 3.1 डिग्री सेल्सियस के तापमान की वृद्धि के रास्ते पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश कहते हैं कि वैश्विक नेताओं को कार्यवाही के लिए प्रेरणा बननी चाहिए।
हीट इज एस्टिमेटेड टू किल ऑलमोस्ट हाफ अ मिलियन पीपल अ ईयर एंड दैट्स अबाउट 30 टाइम्स मोर देन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। वी नो व्हाट इट इज ड्राइविंग इट। Fossil fuel charged, human induced climate change. And we know it's going to get worse. Extreme heat is the new abnormal. But the good news is that there are solutions. The good news is that we can save lives and we can limit its impact.
जलवायु वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 का मुख्य उद्देश्य था, जो नवंबर में अजरबैजान में आयोजित की गई थी। ये धनराशि अधिक आय वाले देशों से गरीब देशों की को दी जानी थी ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटा जा सके। सम्मेलन में 200 के करीब देश प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो समय से 30 घंटे अधिक देर तक चली। अंतिम जलवायु वित्तीय लक्ष्य की राशि ने विकासशील देशों को नाराज कर दिया। कम से कम 460 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर प्रतिवर्ष सार्वजनिक धन, विकास बैंक ऋण और निजी वित्त सहित विभिन्न स्रोतों से आ सकते हैं। समोआ के जलवायु दूत टोएलो सेलू सेलू सेड्रिक शूस्टर का कहना है कि ये राशि विकासशील देशों द्वारा मांगी गई राशि का चौथाई हिस्सा भी नहीं है, लेकिन कम से कम ये एक महत्वपूर्ण शुरुआत तो है।
To get the outcome, but in terms of the spirit of multilateralism, we were wanted to engage with all the other countries, and it's come up with an outcome. Some of the, especially in the NCKG and the mitigation areas, that didn't go anywhere. But we're satisfied in a way. We've got something to start with.
वहीं गार्जियन अखबार में लिखते हुए COP29 के अध्यक्ष मुख्तार बायवेव का कहना है कि उनकी वार्ता टीम ने वैश्विक दक्षिण के लिए समर्थन बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये 2015 में पेरिस में प्रतिज्ञा किए गए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में काफी बड़ा कदम है। ऑस्ट्रेलिया ने COP31 की मेजबानी का प्रस्ताव दिया है, जिसमें प्रशांत राष्ट्र भी शामिल होंगे। COP29 में ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन मंत्री क्रिस बावन ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का छठा सबसे बड़ा फंडिंग योगदान देगा, जो एक ऐतिहासिक जलवायु नुकसान और क्षति कोष है।
This year I returned to Fiji to meet with climate ministers from across the Pacific, where the impacts of climate change are a clear and present danger, not far away abstractions, where climate change is not seen as a subject for negotiation, but a matter of their very existence. This is a message that the world needs to hear, and a reality the world needs to see.
कम ऊंचाई वाले प्रशांत द्वीप राज्यों के लिए बढ़ते समुद्री स्तर की वास्तविकता का अर्थ है कि जलवायु शरणार्थियों का विचार अब अधिक वास्तविक लगने लग गया है। एक द्विपक्षीय संधि ऑस्ट्रेलिया तुवालु फिलिपिली यूनियन संधि के तहत 2025 के मध्य से ऑस्ट्रेलियाई सरकार प्रत्येक वर्ष तुवालुओं को 280 विशेष वीजा प्रदान कर सकती है। ये वीजा किसी कार्य आवश्यकताओं से बंधे नहीं होंगे। 21 वर्षीय मिरियम मॉरिस, जो किरीबीती से हैं, ने SBS से कहा कि उनके स्थानांतरण को लेकर विचार अब मजबूत होते जा रहे हैं।
No one wants to leave. We have our Tuvaluan fellows here. We have discussed with them about the Falipili, and they have stated, and we share the same way of thinking, that our Pacific people belong in the Pacific, because that's where they are. Their cultures, their identity is all rooted in our islands, and we do not want to leave our island. We tend to stay. We prefer to die where we are born and not to relocate.
इसी बीच समुद्री वैज्ञानिक महासागर और कोरल पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित और पुनर्वासित करने का काम कर रहे हैं। इस काम की सबसे बड़ी उपलब्धि 14 नवंबर को सोलोमन द्वीप के पास दुनिया के सबसे बड़े कोरल की खोज रही। ये कोरल 5 टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है। कोरल वैज्ञानिक एरिन ब्राउन, जो नेशनल जियोग्राफिक अभियान प्रिस्टीन सी से इस खोजने वाली टीम का हिस्सा रहे, कहते हैं कि ये खोज काफी प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण है।
And the results were both awe-inspiring and magnificent because in the 30-plus years that I've been doing coral reef research, I've never seen anything quite this massive or impressive. So it's really spectacular. Now, the significance of finding coral like this goes beyond simply enjoying the moment, but it really shines a light on the significance of coral reefs worldwide, what their critical role is ecosystem.
SBS News से इस रिपोर्ट को आपके लिए बेवकवान और SBS हिंदी से वृषाली जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।